सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे सातवें एपिसोड की। इस एपिसोड में हम सुनेंगे पांडु के वनवास की कथा, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में हमने पांडु के पराक्रम की कथा सुनी थी। पांडु ने विवाह के बाद पूरे विश्व को जीत लिया था। अब पांडु अपना ज्यादा से ज्यादा समय वन में शिकार करते हुए व्यतीत करती हैं। फिर हमने कौरवों के जन्म के पीछे की कथा सुनी। एक दिन महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे, जहां गांधारी ने उनकी सेवा सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर वेद व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांधारी को प्रसव नहीं हुआ। वहीं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का जन्म समाचार सुनकर गांधारी और दुखी हो गई। उसने अपने गर्भ पर जोर जोर से प्रहार किया और एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, जिसे वेद व्यास जी ने 100 टुकड़ों में बटवा कर 100 कुंडों में रखवा दिया, जिससे 100 कौरवों का जन्म हुआ। 100 भागों में से एक और भाग बच गया, जिससे गांधारी को एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई। अंत में हमने जाना कि कैसे पांडु ने एक हिरण के जोड़े को समागम के समय तीर से मार दिया। असल में वह हिरण एक ऋषि थे, जिन्होंने पांडु को शाप दिया कि वह भी उनके जैसे प्रणय की अवस्था में आकर ही परलोक सिधार जाएंगे। पांडु वनवास का निश्चय कर चुके हैं। चलिए जानते हैं आगे की कथा। वनवास का प्रण लेकर पांडु अपनी पत्नियों के पास आए और उन्हें अपने प्रण के बारे में बताया। पांडु ने उन्हें वापस हस्तिनापुर चले जाने को कहा और साथ ही साथ यह भी कहा कि वह अब से अपने पिता वेद व्यास जी की तरह तपस्या करेंगे और ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे। पति की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कुंती और माद्री ने भी उन्हें साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन पांडु ने इनकार कर दिया। जिस पर उन दोनों ने कहा कि अगर राजा पांडु उन्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगी। राजा पांडु ने दोनों की बात स्वीकार कर ली और उन्हें अपने साथ लेकर वन में तपस्या करने हेतु जाने के लिए तैयार हो गए। राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ आश्रम में अपना आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए पहुंच गए। वहां पहुंचकर पांडु ने अपने और अपनी पत्नियों के सारे आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए और सन्यासियों का वेश धारण कर लिया। राजा पांडु ने अपने सेवकों से कहा कि वे जाकर उनके सन्यास का समाचार हस्तिनापुर में उनके परिवार को दे दें। पांडु की ऐसी बातें सुनकर उनके सभी सेवकों को बहुत दुख हुआ। वे भारी मन से राजधानी तो लौट गए, लेकिन सबका मन पांडु के साथ ही रह गया। वहीं जब धृतराष्ट्र को यह सूचना मिली और सेवकों ने उन्हें बचा हुआ धन लौटाया, तो वह भी पांडु की चिंता में दुखी रहने लगे। वह पांडु को बारंबार स्मरण करते और उसी की बातें सोचते रहते। इस तरह पांडु का वनवास नागशत नाम के पर्वत से शुरू हुआ। वह चैत्रथ गए और वहां से कालकुट होते हुए गंधमादन पर्वत जा पहुंचे। कुछ समय वहां बिताने के बाद पांडु इंद्रद्युम्न सरोवर पहुंचे और हंसकुट को लांघते हुए शतश्रंग पर्वत पर पहुंचे। यहां पहुंचकर वह तपस्या में लग गए। अब पांडु तपस्या करते हुए तथा ऋषि मुनियों की सेवा करते हुए ब्राह्मणों के जैसे जीवन जीने लगे। एक दिन कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ऋषि और महर्षि एक साथ ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा लिए स्वर्ग जाने का विचार करने लगे। ऋषियों को जाते हुए देखकर पांडु ने उनसे पूछा, ऋषिवर, आप सब कहाँ जा रहे हैं? कृपया करके मुझे भी बताइए। ऋषियों ने कहा, राजन, आज ब्रह्मलोक में देवताओं, ऋषियों, महर्षियों और महामना पितरों का एक बड़ा समूह एकत्र होने वाला है। हम सभी वहीं जा रहे हैं। यह सुनते ही महाराज पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा खड़े हो गए। उनके मन में स्वर्ग जाने की इच्छा जाग उठी और वह उत्तर की ओर मुंह करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ शतश्रृंग पर्वत से चल दिए। उन्हें जाता देखकर गिरिराज हिमालय के ऊपर उत्तर की ओर यात्रा करने वाले तपस्वियों ने पांडु से कहा, राजन, इस पर्वत पर हमने बहुत से ऐसे प्रदेश देखे हैं जहां पहुंचना बहुत कठिन है। वहां देवताओं, अप्सराओं और गंधर्वों की क्रीड़ा भूमि है। वहीं कुबेर के उद्यान भी हैं। वहां की भूमि कहीं पर ऊपर तो कहीं पर नीचे है। इसी मार्ग में हमने न जाने कितनी ही बड़ी बड़ी नदियां, दुर्गम तट और घाटियां देखी हैं। इस मार्ग में बहुत सी ऐसी जगह है जहां बर्फ जमी रहती है। वहां जीवन का कोई नाम भी नहीं है, ना जानवर है, ना पक्षी है और ना ही वृक्ष। कहीं कहीं तो ऐसी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। ऐसे स्थानों को पक्षी भी पार नहीं कर सकते, तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इस मार्ग पर केवल वायु और सिद्ध महर्षि ही जा सकते हैं। ये दोनों राजकुमारियां भला ऐसे कठिन मार्ग पर कैसे चल पाएंगी? राजन, ये दोनों राजकुमारियां इतने दुख और कष्ट सहने के योग्य नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ चलने का विचार त्याग दीजिए। मुनियों की बातें सुनकर पांडु ने उत्तर दिया, महर्षियों, लोग कहते हैं संतानहीन के लिए स्वर्ग के द्वार बंद रहते हैं। मैं भी तो संतानहीन ही हूँ, इसीलिए आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। ऋषियों, मैं अपने पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं पाया हूँ, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। निसंतान अवस्था में मेरे शरीर का अंत होने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य होगा। नरेश, तुम्हें पाप रहित देवों के समान संतान होने का योग है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से यह साफ साफ देख सकता हूँ। अपने पुत्र फल को प्रयत्न द्वारा प्राप्त कीजिए। निसंदेह आपको गुणवान और बुद्धिमान संतान प्राप्त होगी। ऋषियों की यह बात सुनकर राजा पांडु गहरी सोच में पड़ गए। वह जानते थे कि मृग रूपधारी ऋषि के शाप के कारण उन्हें संतान सुख तो प्राप्त नहीं हो सकता है। इस तरह कुछ दिन बीत गए और राजा पांडु अब भी ऋषियों की बात पर विचार कर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी पत्नी कुंती को अपने पास बुलाया और कहा, देवी, यह समय हमारे लिए विपत्तियों से भरा हुआ है। इस समय संतान उत्पन्न करने के लिए तुम मेरी सहायता करो। राजा पांडु ने संतान उत्पन्न करने के लिए क्या प्रयत्न करने के बारे में सोचा है? क्या संतान के लिए व्याकुल पांडु को कुंती कर्ण और उनको मिले वरदान के बारे में बताएगी? अब ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।